राजवंश एम्पायर में शेयर्स के बंटवारे के लिए मीटिंग शुरू हो गई थी। जैसा कि इशिका को डर था, नकुल ने अपना पासा फेंक दिया था। नकुल, अभिमन्यु और पार्थ को एक जितने शेयर्स मिलने वाले थे। प्रशांत उनके साथ पहले से था, ऐसे में पार्थ भी उनके फेवर में आया तो उनके हिस्से में ज्यादा शेयर्स आने वाले थे। इशिका ने परेशान चेहरे के साथ अभिमन्यु की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु, ये सब पहले से तैयार होकर आए हैं। इन्हें तो हमेशा से तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटाना था। ऐसा लग रहा है ये इस बार अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, और इन्हें क्या लगता है तैयारी के साथ सिर्फ ये आए हैं? जस्ट वेट एंड सी, अभी दादी का मास्टर स्ट्रोक बाकी है। इन्हें आदत हो गई है सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाने की। इशिका ने बेचाली से आगे कहा, तुम मुझे तो बता ही सकते हो कि तुम्हारा प्लान क्या है। तुम जानते हो ना, ऐसी हालत में मेरा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। इशिका की प्रेगनेंसी के चलते उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ रहा था और ये अभिमन्यु भी नोटिस कर रहा था। पहले जहां इशिका खुद सोच समझकर डिसीजन लेती थी और शांति के साथ काम करने में यकीन रखती थी, लेकिन आजकल उसका बिहेवियर थोड़ा इम्पल्सिव हो गया था। प्रेगनेंसी में क्या इतने चेंज आते हैं कि इंसान का बिहेवियर भी बदल जाता है? मैंने तुम्हें इतना इमेच्योर बिहेव करते कभी नहीं देखा। खैर, थोड़ा सा वेट कर लो। एक्चुअली वो क्या है ना कि हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं तो सबका ध्यान हमारी तरफ है, अभिमन्यु ने सर हिलाकर कहा और इशिका को बाकी लोगों की तरफ देखने का इशारा किया। अभिमन्यु के कहने पर इशिका ने अपने चारों तरफ देखा तो सच में सब लोग उन्हें ही घूर कर देख रहे थे। अब वो बिल्कुल शांत हो गई थी। वहीं नकुल के बाद प्रशांत ने कहा, हाँ तो ठीक है, हम शेयर्स का बंटवारा शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब नक्श को भी उसका हिस्सा मिले। जरूर मिस्टर राजवंश, इस बार बंटवारे की लिस्ट में मिस्टर नक्श राजवंश का भी नाम लिखा हुआ है, मिस्टर दत्त ने कहा तो नकुल और नक्श के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पहले नकुल ने अपने हिस्से से ही कुछ शेयर्स नक्श के नाम कर रखे थे, लेकिन अब नक्श को अलग से शेयर्स मिलने वाले थे। इसका मतलब ये था कि उनका पलड़ा और भी भारी होने वाला है। नकुल जल्दी से आगे बोला, हाँ तो ठीक है, फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेते हैं। दादी ने लिस्ट तो बना ही दी होगी, आप उसी हिसाब से सबको बता दीजिए किसके हिस्से में कितने शेयर्स आए हैं। जिस मेंबर को बाकी शेयर होल्डर का सपोर्ट मिलेगा वो कंपनी का सीईओ बनेगा। हाँ, लगता है आज राजवंश एम्पायर का सीईओ बदलने वाला है, प्रशांत ने अभिमन्यु की तरफ देखकर विक्ट्री स्माइल के साथ कहा। पार्थ चुपचाप उन सब की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, यकीन नहीं होता, इन लोगों को एक प्रोफेशनल मीटिंग में भी अपने घर के झगड़े लेकर बैठना होता है क्या? सच में मेरे डैड इतने बेवकूफ हो सकते हैं? उन्हें देख नहीं रहा कि दादी जब हमेशा से अभिमन्यु को सपोर्ट कर रही है तो वो उसे सीईओ की पोजीशन से क्यों हटने देगी? इतने सालों में जो बात प्रशांत और नकुल के समझ में नहीं आई थी वो वसुधा से एक बार मिलने के बाद ही पार्थ अच्छे से समझ गया था। वहां चाहे कितनी भी मीटिंग हो जाए या अभिमन्यु के खिलाफ कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन वसुधा के होते हुए कोई अभिमन्यु को उसकी पोजीशन से हटा नहीं सकता था। शेयर्स के बंटवारे का अनाउंसमेंट वसुधा करने वाली थी। उन्होंने कमान अपने हाथ में लेते हुए कहा, इस बार मैंने शेयर्स का बंटवारा थोड़ा अलग तरीके से किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु के लीगल पेरेंट्स मैं और उसके दादाजी थे, और इस वक्त मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं ज्यादा शेयर्स अपने पास रखकर कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकूं। तो मैं चाहती हूं कि मेरे शेयर्स भी मैं अभिमन्यु और उसकी पत्नी इशिका के नाम करूं। मैं अपने हिस्से के शेयर्स का 30% इस बार डायरेक्ट अभिमन्यु के नाम करती हूं, जबकि अभिमन्यु के हिस्से आने वाले 10% शेयर इशिका के पास जाने वाले हैं। बाकी दिग्विजय राजवंश के पास 15%, प्रशांत के पास 10%, पार्थ और नकुल के पास भी 10-10% और नक्श के पास 5% शेयर्स आने वाले हैं। वसुधा ने अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया था। इससे पहले कि सीईओ की पोजीशन के लिए वोटिंग की जाती, दिग्विजय ने कहा, मैं अपने 15% शेयर के साथ अभिमन्यु को सीईओ बनने के लिए वोट करता हूँ। मेरे शेयर्स का सपोर्ट अभिमन्यु को होगा। वसुधा के इस तरह अपने शेयर्स का अपना हिस्सा डायरेक्टली अभिमन्यु को देने पर वो सब वसुधा को घूरने लगे थे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वसुधा ने सीधे सीधे एक बड़ा हिस्सा इशिका के नाम कर दिया था। नकुल ने तुरंत ऑब्जेक्शन करते हुए कहा, अगर अभिमन्यु की पत्नी को शेयर्स मिल रहे हैं तो इस हिसाब से उर्वशी को भी शेयर्स का एक हिस्सा मिलना चाहिए। दादी, आप हर बात में भेदभाव करती हैं। हाँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरा खड़ा किया हुआ है। किसी को प्रॉब्लम है तो क्यों ना आज बंटवारा भी कर लिया जाए। तुम लोगों का जितना हिस्सा बनता है उतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर किसी ब्रांच को तुम लोगों के नाम कर दिया जाएगा। फिर पूरे बिजनेस पर अभिमन्यु का हक होगा। बोलो, मंजूर है? वसुधा ने हर तरीके से प्रशांत और नकुल को फंसा दिया था। वहीं उनकी इस चाल को देखकर पार्थ के चेहरे पर स्माइल थी। उसने मन में कहा, मान गए दादी आपको, लेकिन अब अगला स्टेप उठाने की बारी मेरी है। जैसे ही बंटवारे की बात आई, प्रशांत और नकुल ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अगर वो अपना हिस्सा लेकर अलग होते तो उन्हें नुकसान ही होना था। नहीं, हमें बंटवारा नहीं चाहिए, नकुल ने दांत पीसते हुए कहा। मिस्टर दत्त ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर पार्थ की तरफ देखा। वो पार्थ से अपना डिसीजन जानना चाहता था। नकुल और प्रशांत भी यही सोच रहे थे कि पार्थ उनका साथ देगा। हालांकि उनके पास शेयर्स कम हो सकते थे, लेकिन अगर पार्थ उनके साथ होता तो उनकी पोजीशन कुछ और स्ट्रांग हो सकती थी। बताइए मिस्टर पार्थ राजवंश, आप किसे सपोर्ट करके किस तरफ जाना चाहेंगे, मिस्टर दत्त ने पूछा। सबको यही लग रहा था कि पार्थ प्रशांत का साथ देगा, लेकिन उनकी उम्मीदों से अलग पार्थ ने जवाब में कहा, मैं भी अभिमन्यु को सीईओ बनने के फेवर में हूँ और मेरा वोट और शेयर्स भी उसी को जाते हैं। पार्थ के इस डिसीजन ने प्रशांत और नकुल को पूरी तरह हैरान कर दिया था, तो वहीं इशिका और अभिमन्यु भी पार्थ को अजीब नजरों से देख रहे थे। जो खेल पार्थ खेल रहा था आज उसने उसकी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। इशिका ने पार्थ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, किन इरादों के साथ आए हो तुम हमारी जिंदगी में पार्थ रायचंद? तुम हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो बल्कि हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर इरादे क्या हैं तुम्हारे? पार्थ ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा जो सवालिया नजरों से उसे ही घूर रही थी। पार्थ ने अपने मन में कहा, इरादे तो बहुत कुछ हैं डॉक्टर अनामिका जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी, पर धीरे धीरे सामने आ ही जाएंगे। बस इतना जान लो कि ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। आखिर पार्थ इशिका के पीछे क्यों पड़ा है? आज थोड़ा बिजी थी तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं लिख पाई, तो इतने से एडजस्ट कर लीजिए, कल थोड़ा बड़ा चैप्टर लिख दूंगी। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं। दूसरा, आप रहते हो ना कि इशिका की जिंदगी में कभी खुशी आएगी या नहीं, तो अगर मैंने सब कुछ सिंपल और सीधा लिखा तो आप पढ़ने के लिए आओगे ही नहीं। जो कहानी बिल्कुल सिंपल चलती है उनकी कोई रीच भी नहीं होती।